الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری محبت اور شوق کی وجہ سے مجھ پر ہر دن اور ہر رات میں تین تین مرتبہ درود پاک پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم ایک مرتبہ پھر اپنے سلسلے مضامین قرآن میں حاضر ہیں. حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ نساء کے مضامین میں سے جس مضمون پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی اہم مضمون ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اپنی اطاعت اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ امام، امیر، حاکم، بادشاہ، قاضی اور علماء کی اطاعت کا بھی حکم ارشاد فرمایا. چنانچہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں، پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اسے اللہ و رسول کے حضور رجوع کرو. اگر اللہ و قیامت پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا. اس آیہ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے، آپ کی جو فرما برداری ہے، وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے میری اطاعت کی اس نے گویا اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی. ناظرین، اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں ارشاد فرمایا، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. ترجمہ کنز الایمان، जिसने रसूल का हुक्म माना बेशक उसने अल्लाह का हुक्म माना, और जिसने मुंह फेरा तो हमने तुम्हें इनके बचाने को ना भेजा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह तबारक व तआला की इताअत की, और जिस बंदे ने मुझसे मोहब्बत की उसने गोया अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत की। इस पर बाज मुनाफिकीन ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया ये कहना चाहते हैं कि हम उन्हें रब मान लें, जैसा कि नसारा ने हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब माना। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनका रद फरमाया और ये आयत नाजिल फरमा दी और अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के कलाम की तस्दीक फरमा दी कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इताअत है वो हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला की इताअत है। और जिसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमा बरदारी से एराज किया तो उसका फिर वबाल उसी बंदे के ऊपर होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें इसलिए नहीं भेजा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहर सूरत इन लोगों को जहन्नम से बचाएं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने तबलीग दीन के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। हजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमा बरदारी ये फर्ज है। कुरान पाक की मुतअद्दद आयात बय्यिनात में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म दिया गया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को अपनी इताअत करार दिया और इस पर सवाब अजीम का वादा भी फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी पर अजाब जहन्नम का मुजदा भी सुनाया। लिहाजा जिस काम का सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म दे तो हम पर लाजिम है कि हम इताअत करते हुए उस पर अमल करें, और जिस बात से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर दें, रोक दें, तो उस काम से रुक जाया जाए। अल्लाह जल्ला मजदुहू कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, वमा आताकुम रसूल फखुजूह वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इकाब। और जो कुछ तुम्हें रसूल अता फरमाए वो लो, और जिससे मना फरमाए उससे बाज रहो, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह का अजाब सख्त है। हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने एक मर्तबा यूं इरशाद फरमाया कि मेरी और उस चीज की मिसाल जिसके साथ अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे भेजा है, ये उस शख्स की तरह है जो अपनी कौम के पास आया और उनको कहने लगा कि मेरी कौम, मैंने अपनी इन आंखों से इस पहाड़ के पीछे एक बहुत बड़ा लश्कर देखा है जो तुम्हारी तरफ चढ़ाई कर रहा है, मैं वाजे तौर पर उस लश्कर से तुम्हें डराता हूं, अपनी नजात की फिक्र करो, नजात की राह को तलाश करो। अब उनमें से एक गुरोह ने इस शख्स की बात मान ली और अपने बचाव के रास्ते तलाश किए। रातों रात उन्होंने वहां से कूच किया और नजात को हासिल कर लिया। और एक गिरोह ऐसा भी था कि जिसने उस शख्स की बात को नहीं माना और वो डटे रहे और सुबह तक लश्कर का इंतजार करते रहे। लश्कर ने चढ़ाई की, उन पर हमला किया और हमला करके उन सब को हलाक कर दिया। तो फरमाया, तो जिसने मेरी इताअत की और जो मैं लेकर आया हूं उस पर अमल पैरा हुआ, वो उस गुरोह जैसा है जो निजात पा गया और जिसने मेरी नाफरमानी की और जो मैं लाया उसे जुठला दिया, तो वो उस गुरोह की तरह है जो ना मानकर हलाकत में पड़ा। तो वाजे तौर पर यह बात इस हदीस मुबारक से मालूम हुई कि आफियत इसी में है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म देते हैं उसके मुताबिक अमल किया जाए। कुरान की आयात मजिनात इसी की तरफ इशारा कर रही हैं। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूह वमा नहाकुम अन्हु फन्तहू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की, और जिसने अमीर की नाफरमानी की उसने गोया मेरी नाफरमानी की। तो इसी आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व ताला और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के हुक्म के बाद अमीर, हाकिम, बादशाह, काजी और उलमा की इताअत का हुक्म दिया गया। इस आयत से फिर यह साबित हुआ कि मुसलमान हुक्मरानों की इताअत का भी हुक्म है, बशर्ते कि वो हक के मुवाफिक फैसला करें, शरीयत के मुताबिक फैसला करें। तो उनकी इताअत का हुक्म है, यानी उनका फैसला शरीयत के खिलाफ ना हो। और अगर वो हक के खिलाफ फैसला करते हैं, वाज़े तौर पर कुरान की किसी आयत बय्यिना या फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक की खिलाफ वर्जी है, यानी यूं कह लें कि शरीयत के किसी हुक्म के अगेंस्ट है, तो फिर गोया हक के मुवाफिक नहीं है। तो ऐसी सूरत में फिर उनकी इताअत भी लाजिम ना होगी। और जो लोग अल्लाह तबारक व ताला और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की इताअत करते हैं वो कौन लोग हैं, इसी सूरह मुबारका में ये भी बयान फरमा दिया गया। और इरशाद फरमाया, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا। ترجمہ کنز الایمان، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا जिन पर अल्लाह ने फजल किया, यानी अंबिया और सिद्दीक और शहीद और नेक लोग, और ये क्या ही अच्छे साथी हैं। इस आय मुबारका में अंबिया का जिक्र हुआ, सिद्दीकीन का जिक्र हुआ, शुहदा का जिक्र हुआ और सालिहीन का जिक्र किया गया। आइए इनकी तारीफात भी सुनिए। नबी वो इंसान है जिस पर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से वही नाजिल हो और जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी मखलूक तक अपने अहकाम पहुंचाने के लिए मबऊस फरमाया हो, यानी भेजा हो। और सिद्दीक वो शख्स है जो अपने कौल और अपने एतिकाद में सादिक हो, जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला नु और दीगर फाजिल सहाबे किराम अलैहिम रिदवान और अंबिया साबिकीन अलैहिमुस्सलाम के असहाब उनके साथी, क्योंकि वो सिद्क और तस्दीक में और इखलास में दूसरों पर फायक होते हैं और गालिब होते हैं। ये भी कहा गया है कि जो दीन के तमाम अहकाम की बगैर किसी शक और शुबे के तस्दीक करता है वो सिद्दीक है। और यहां इस आयत में सिद्दीकीन से मुराद सुल्तान जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम के अकाबिर सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहि मजमाईन सबसे पहले मुराद हैं, जैसे हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। सिद्क के माना और बहुत से मरातिब भी मुफस्सिरीन ने इस आयत मुबारका के तहत बयान फरमाए। सिद्दीकीन انبیاء اکرام علیہ السلام کے سچے متابعین کو کہتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ ان کی راہ پر قائم رہتے ہیں، جو انبیاء اکرام علیہ السلام راستہ لے کر آئے ہیں، جو شریعت لے کر آئے ہیں، یہ اخلاص کے ساتھ ان کے قول کا پاس رکھتے ہیں اور اعتقاد کے ساتھ اسے مضبوط کر لیتے ہیں، اور پھر جو انبیاء اکرام علیہ السلام نے کہا اس کے مطابق عمل کرتے چلے جاتے ہیں۔ کہا یہ صدیق ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ صدق کے 6 معنی بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا گفتگو میں جو صدق ہے یہ بھی صدیق کے لیے ہے، نیت و ارادہ میں صدق، یہ دوسرا معنی ہے۔ تیسرا معنی عزم میں صدق، اور چوتھا معنی عزم کو پورا کرنے میں صدق، اور پانچواں عمل میں صدق، اور چھٹا دین کے تمام مقامات کی تحقیق میں صدق ہے۔ ان معنی کے اعتبار سے صادقین کے مختلف درجات بن جاتے ہیں، اور جس شخص میں کسی خاص چیز میں صدق پایا جاتا ہے تو وہ اسی چیز کی نسبت سے صادق کہلائے گا۔ مثلا گفتگو میں صدق، زبان میں صادق ہے، سچا ہے، یہ خبریں دینے میں سچا ہے، باتیں کرنے میں سچا ہے، جو بات کہہ دیتا ہے وہ کرتا ہے، جو وعدہ کر لیتا ہے وہ وفا کرتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ گفتگو میں صادق ہے، یعنی زبان کا سچا ہے۔ اسی طرح دیگر تمام جو درجات ہیں اسی کے اعتبار سے ہوں گے۔ تیسرا، آیت مبارکہ میں فرمایا شہید، شہید وہ شخص ہے جو دلائل اور براہین کے ساتھ دین کی صداقت پر شہادت دے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہوا مارا جائے۔ جو مسلمان ظلمن قتل کیا جائے وہ بھی شہید ہے۔ یہاں شہداء سے مراد وہ حضرات ہیں جنہوں نے راہ خدا میں اعلائے کلمت اللہ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ صالحین سے مراد وہ دیندار لوگ ہیں جو حق العباد اور حقوق اللہ دونوں ادا کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے آ جائیں تو روزے بھی رکھتے ہیں، حج رب نے فرض کر دیا تو وہ حج کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں، اور اسی طرح دیگر جو حقوق اللہ ہے ان تمام میں ادائیگی میں پیش پیش رہتے ہیں، اور جب معاملہ حقوق العباد کا آ جاتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہے، لوگوں کے ساتھ لین دین ہے، تجارت کا کام ہے، اور دیگر تمام معاملات جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، وہ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں ہی ادا کرتے ہیں، اور ان کے احوال و اعمال ظاہر و باطن اچھے اور پاک ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو صالحین کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس آیہ مبارکہ جس کے اوپر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کا شان نزول کیا ہے، آئیے وہ بھی سماعت کیجئے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کمال درجے کی محبت فرمایا کرتے تھے، اور انہیں جدائی کی تاب نہ تھی۔ ایک روز اس قدر غمگین اور رنجیدہ حاضر ہوئے کہ چہرے کا جو رنگ تھا وہ متغیر تھا، بدلا ہوا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہے تو آپ نے دریافت فرمایا آج رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ عرض کی نہ مجھے کوئی بیماری ہے اور نہ درد، سوائے اس کے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں ہوتے تو انتہا درجہ کی وحشت و پریشانی ہو جاتی ہے، جب آخرت کو یاد کرتا ہوں تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں میں کس طرح دیدار کر پاؤں گا۔ آپ اعلیٰ ترین مقام میں ہوں گے اور مجھے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے جنت دے بھی دی، तो उस मकामे आली तक मेरी रसाई कहाँ होगी। इस पर फिर ये आये मुबारका नाजिल हुई और उन्हें तस्कीन दी गई कि मंजिलों के फर्क के बावजूद फरमा बरदारों को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी और मईयत की नेमत से सरफराज फरमाया जाएगा और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के मुखलिस फरमा बरदार लोग जन्नत में उनकी सोहबत और उनके दीदार से महरूम नहीं होंगे। हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया, आदमी उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत की। प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, इस आयत का ये माना नहीं है कि अल्लाह तबारक व ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाले अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन सब जन्नत के एक ही दर्जे में होंगे। जिस दर्जे में सालिहीन है उसी दर्जे में अंबिया होंगे, जिस दर्जे में शुहदा है और सिद्दीकीन है उसी दर्जे में अंबिया भी मौजूद होंगे और सब एक ही दर्जे में रहेंगे। बल्कि इसका माना यह है कि जन्नत में रहने वाले सब एक दूसरे की जियारत करने पर कादिर होंगे और उनके दराजात का जो फासला है एक दूसरे की जियारत और मुशाहदा के लिए हिजाब यानी रुकावट नहीं बनेगा। वो अलग बात है कि दराजात मुख्तलिफ होंगे, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के दर्जे को कौन पहुंच सकता है? यकीनन कोई भी नहीं। वो मकामे आली पर होंगे लेकिन जो उनके मानने वाले हैं, जो उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, जिनका शुमार सिद्दीकीन में है और जिनका शुमार शुहादा में है और जिनका शुमार सालिहीन में है, जिन्होंने अपनी जिंदगी उनके कहने पर अल्लाह की राह में वक्फ कर दी, वो जब चाहेंगे अपने दर्जे से निकलकर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की जियारत के लिए और उनकी सोहबत से फैज याब होने के लिए जा सकेंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत के लिए ये शौक और आपकी जियारत के लिए इस्तेराब, ये सिर्फ हजरत सौबान रदी अल्लाह ताला अनहु ही की हालत न थी बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत तो तमाम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को बहुत महबूब थी और दुनिया की रफाकत के साथ साथ उखरफी रफाकत का शौक भी उनके दिलों में रचा बसा था और वो इसके लिए बड़े फिक्रमंद हुआ करते थे। जैसा कि हजरत सौबान रदी अल्लाह ताला अन्हों की हदीस मुबारक इनके अमल से जाहिर है। हजरत रबिया बिन काब असलमी रदी अल्लाह ताला अन्हों फरमाते हैं, मैं रात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदस में रहा करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वुजू के लिए पानी लाया करता और दीगर खिदमत के उमूर भी सर अंजाम दिया करता था। एक रोज सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, सल यानी मांगो, क्या मांगते हो? तो मैंने जवाब में अर्ज किया, असअलु का मुराफकत का फिल जन्ना, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत में आपका साथ मांगता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसके अलावा और कुछ? मैंने अर्ज की, मेरा मकसूद तो वही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो फिर ज्यादा सजदे करके अपने मामले में मेरी मदद करो। इसी तरह जंगे ओहद के मौका पर हजरत उम्मे अम्मारा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक बताला हम लोगों को जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत गुजारी का शर्फ अता फरमाए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके लिए और उनके शोहर और उनके बेटों के लिए इस तरह दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा जअलहुम रुफकाई फिल जन्ना, ए अल्लाह अज्जा वजल, इन सब को जन्नत में मेरा रफीक बना दे। हजरत उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा जिंदगी भर ऐलानिया ये कहती रही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस दुआ के बाद दुनिया में बड़ी से बड़ी मुसीबत मुझ पर आ जाए तो मुझको उस मुसीबत की कोई परवाह नहीं होगी। कि हजूर ने हमें इतनी बड़ी दुआ दे दी है, इसके बाद कोई मुसीबत हमें रुस्वा नहीं कर सकती। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को कौन नहीं जानता। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात का वक्त जब करीब आया तो उनकी जौजा शिद्दत गम की वजह से अपनी जुबान से ये अल्फाज अदा करने लगी, हाय गम। तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वाह बड़ी खुशी की बात है कि कल हम अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके असहाब रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से मुलाकात करेंगे। एक जंग के मौका पर हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत हाशिम बिन उतबा रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ए हाशिम रजी अल्लाह ताला अन्हु, तुम जन्नत से भागते हो हालांकि जन्नत तो तलवारों के साए में है। आज मैं अपनी महबूब तरीन हस्तियों मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके साथियों से मुलाकात करूंगा। चुनाचे उसी जंग में आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो गई। अल्लाह ताला इन मुकद्दस हस्तियों के शौके रफाकत के सदके हमें भी अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की कब्र हशर और जन्नत में रफाकत नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला की इताअत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत इंसान को सुरखुरू कर देती है कि उसे जन्नत में साथ अंबिया का मिलेगा, सिद्दीकीन का मिलेगा, शुहदा और सालिहीन के साथ होगा। और ये क्या है, फरमाया ये अल्लाह का फजल है और अल्लाह काफी है जानने वाला। मालूम हुआ कि जन्नत में हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब जन्नत की बहुत बड़ी नेमत होगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने उसे बतौर खास फजीलत में शुमार फरमाया और इसे अपना फजल करार दिया। इसलिए मजलिस चैनल के नाजरीन, हम सबको चाहिए अपनी जिंदगी अल्लाह तबारक व ताला के अहकाम के मुताबिक बसर करें, अल्लाह की इताअत और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते चले जाएं। इंशाअल्लाह दुनिया में कामयाबी होगी और आखरत भी कामयाब होगी। अल्लाह तबारक व ताला हम सब की इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। बिजाहिन नबी जिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।